नमः समय साराय स्वर्ण क्या चकाशे चित्त भावाय भावाय शरण भावांतर।
समय सार परमागम की 36वीं गाथा पर चर्चा चल रही है। उसमें आचार्य अमृतचंद की आत्मख्याति टीका में उसका भाव इस प्रकार खोला है। आपके पास जो किताब समय सार अनुशीलन है उसके पेज नंबर 290 निकालें। पेज नंबर 290 नीचे से दूसरा पैरा। निश्चय से फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव का परमार्थ से पर के भाव द्वारा भाया जाना अशक्य है। दूसरी बात यह है कि स्वयं ही निरंतर विश्व को प्रकाशित करने में चतुर और विकास रूप शाश्वत प्रताप संपत्ति सहित वह भगवान आत्मा ही चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव भाव के द्वारा जानता है कि परमार्थ से मैं एक हूँ। यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का निवारण करना अशक्य होने से मेरा आत्मा और जड़ पदार्थ श्रीखंड की भांति एकमेक हो रहे हैं, तथापि श्रीखंड की ही भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद भेद के कारण मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूँ, क्योंकि सदा अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। इस प्रकार भावक भाव से भेद ज्ञान हुआ। क्या इसमें मर्म की बात कही है कि ये सारी दुनिया है, इसमें छह ही द्रव्य आकाश के एक क्षेत्र में ही रहते हैं। निश्चय से तो अपने स्वभाव में ही रहते हैं सर, लेकिन आकाश की अपेक्षा एक क्षेत्र में रहते हैं, और आत्मा का जो विकारी परिणाम है वो तो और ही गहराई से आत्मा के एक क्षेत्र में ही रहता है। क्या मतलब? जैसे आकाश है तालुक आकाश में भी है, और आप हो तो आकाश में तो हो लेकिन आकाश के दूसरे प्रदेशों में हो, और मैं दूसरे प्रदेशों में हूँ, लेकिन जहाँ आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम है तो वैसे तो वे आत्मा के ही प्रदेशों में है, लेकिन संवर अधिकार की गाथाओं के हिसाब से कहो कि प्रदेश भेद है, तो अभी आकाश के एक प्रदेश में तो दोनों है ही है। क्या समझ में आया? माने जिन आकाश के प्रदेशों में अपना जो असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा है, राग भी आकाश के उन्हीं प्रदेशों में है। आत्मा के प्रदेशों में है और क्या नहीं है, झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। और इनका निवारण करना अशक्य है, माने ये संभव नहीं है आकाश के जिन प्रदेशों में मेरे असंख्य प्रदेश भगवान आत्मा के रहे, राग उस प्रदेश में नहीं रह सकता। और परद्रव्य भी पुद्गल भी रहता है। इसमें लिखा ना, देखो नीचे अपने पढ़ा क्या। दूसरी बात यह है कि स्वयं ही निरंतर विश्व को प्रकाशित करने में चतुर विकास रूप शाश्वत प्रताप संपत्ति से भगवान आत्मा ही चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा जानता है कि मैं परमात्मा से एक हूँ। अब यहाँ यद्यपि से समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का निवारण करना अशक्य होने से, ये तो छह ही द्रव्य के बारे में है। राजादिक के बारे में तो है ही कि छह ही द्रव्य लोकाकाश में एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं और उनका निवारण करना अशक्य है। अब वो कहते एक क्षेत्र में रहते ही नहीं है, देखिए एक ही हो रहे हैं, जरा घबराना नहीं। उन्होंने खुद उदाहरण दिया है कि श्रीखंड की भांति एक हो रहे हैं, माने एकदम एक नहीं हो गए हैं। यदि आप दही में चीनी डाल दो और उसे घोंट कर श्रीखंड बनाओ तो श्रीखंड की भांति, जैसे वो मिठास और खटास एक में एक हो रही है, ऐसे ही छह द्रव्य भी एक में एक हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। वैसे कोई एक हो गए हैं दो द्रव्यों का द्रव्यपना खत्म हो गया, वो नहीं है माने। और इसका निवारण करना अशक्य है, क्योंकि अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान भी इसको निवारण नहीं कर पाए। जहाँ वे हैं वहीं आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, पुद्गल द्रव्य भी है, सही द्रव्य है। तो अनंत वीर के धनी, अतुल्य बल के धनी भी जिसको दूर नहीं कर पाए तो उनका निवारण करना तो अशक्य हो ही गया ना। उन्होंने शरीर से राग छोड़ दिया, शरीर से अपनापन तोड़ दिया, अपने आत्मा में लीन हो गए, शरीर का ध्यान भी नहीं किया। लेकिन जिन आकाश के प्रदेशों में उनके असंख्यात प्रदेश हैं अरहंत भगवान के, उन्हीं आकाश के प्रदेशों में वो पुद्गलमय शरीर भी है, और उसको कर दे अलग जब जाने। निवारण करना अशक्त होने से एक बात, दूसरी बात यह है कि वे क्यों कर रहे निवारण, उन्हें क्या तकलीफ है उनके रहने से जो निवारण करें। मेरे कहने का मतलब अगर निवारण नहीं कर सकते हैं तो बेचारे बहुत दुखी होंगे। दुखी क्यों होंगे, उन्हें निवारण करने की इच्छा हो और फिर वे निवारण नहीं कर पाए, निवारण नहीं करने से कोई तकलीफ हो और फिर निवारण नहीं कर पाए तो तकलीफ होगी। मीना में लाखों आदमी रहते हैं, अगर कोई किसी को निकाल नहीं सकता, सबको भारत की नागरिकता प्राप्त है, क्यों तथा फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम किसी को नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते तो बहुत तक काय भी तकलीफ हो जाएगी। हमें किसी को हटाना भी नहीं है, हम हटाना चाहते भी नहीं है, क्यों और उनके रहने से हमें कोई तकलीफ भी नहीं है। उनका निवारण करना अशक्य है तो अशक्य होए, हमको क्या। लेकिन उस वस्तु स्थिति से भी परिचित करा रहे हैं कि कदाचित कोई जीव मिथ्यात्व के उदय में उनसे अपने को अलग करना चाहे तो संभव नहीं है, इस कल्पना का निषेध है। कोई चाहे तो ख्याल में है ना, लेकिन साहब तो हम नहीं कर सकते, तो हम पर तुम काहे को पराधीन हुए, तुम्हें कोई लेना नहीं, तुम्हें उससे कोई तकलीफ ही नहीं है ना। बोलो आप यहाँ बैठे हो और यही आकाश भी आपको क्या तकलीफ है, काल द्रव्य भी उसी आकाश द्रव्य में है, धर्म अधर्म द्रव्य भी है, उससे आपको थोड़ी सकरा कुकरी हो रही, कुछ नहीं हो रही। ये पड़ोसी से हो सकती है, उनसे तो कुछ है ही नहीं। तो छह द्रव्यों का एक क्षेत्र अवगाह अशक्य होने से, और उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया श्रीखंड की भांति। यहाँ श्रीखंड लिखा और इस छेड़ाला में इसी का अनुवाद कैसे किया, जले पै ज्यो जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। वहाँ दूध और पानी का, यहाँ श्रीखंड और मिठास, मैंने खटास और मिठास कहा, लेकिन बात दोनों की एक ही है। तो कितनी चतुराई से दो बातें एक साथ कह दी कि जल पय, दूध और पानी, इनका क्या है, मेला है, ढेला नहीं है। जल पय ज्यो जियतन मेला, मिल तो गए हैं लेकिन जैसे मेले में मिलते हैं वैसे ही मिले हैं, क्या कोई संबंध नहीं एक दूसरे से, बस तुम मेला देखने आए, हम मेला देखने आए, बस मेला के मेले में टकरा गए। बाद में हम अपने घर चले जाएंगे तो न हम तुम्हें याद करेंगे ना तुम हमें याद करेंगे। ऐसे दूध और पानी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे देव और आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे मेले में मिल जाते हैं ना, ऐसे मिल गए, मेले में मिल जाते हैं लेकिन वे भेले नहीं होते हैं, इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, ऐसे जो इकट्ठे नहीं हुए, ऐसे ही छह द्रव्य इस लोकाकाश में ऐसे ही भेले हो गए हैं, पर उनका कोई मेला नहीं है, मिलाप नहीं हुआ है, एक दूसरे से एक नहीं हो गए हैं, पर उनका निवारण करना भी अशक्य है। ये तो वस्तु की स्थिति का ज्ञान कराया। अब क्या कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हमारा जो ये ज्ञान स्वभाव है ना, इसमें ये भगवान आत्मा भी जानने में आता है और ये रागादिक भाव भी जानने में आते हैं और वहाँ आकाशादिक द्रव्य हैं देवी जानने में आते हैं। क्या कहते, जो मैं हूँ जो मेरा है वो भी जानने में आता है और जो मेरा नहीं है वो भी जानने में आता है। दोनों जानने में आते हैं। तो कहते हैं कि ये जानने में नहीं आए, ये भी शक्य नहीं है, माने इसका निवारण करना भी अशक्य है। अभी घबराना नहीं, पूरी बात सुनना, क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं ये तो बहुत चक्कर है कि कोई चक्कर नहीं है कि हम जिसको जानेंगे उसे अपना मान लेंगे, क्यों मान लोगे। कहते इनका स्वाद स्पष्ट भिन्न भिन्न है और वो अनुभव में आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखा है, बहुत मार में कैसे पढ़ना पड़ता हूँ फिर, यद्यपि से पेज नंबर 290 से नीचे की दो पंक्तियाँ ध्यान देना एक एक शब्द पर। यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का निवारण करना अशक्य होने से मेरा आत्मा और जड़ पदार्थ श्रीखंड की भांति एक मेक हो रहे हैं, अतो भी तथापि श्रीखंड की ही भांति। देखो उदाहरण उसी को, मामला उलट रहे हैं, उदाहरण वही का वही, श्रीखंड की भांति एक मेक हो रहे हैं और श्रीखंड की ही भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद भेद के कारण। के श्रीखंड में जब मैंने उसे खाया तो दही की खटास और चीनी की मिठास एकदम अलग अलग स्वाद में आ रही है, इसलिए मेरे को पता चल जाता है कि खटास दही की है और मिठास चीनी की है। तो ये मोह मेरा कुछ नहीं है, यानी मोह एक 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 मेक हो गए हैं और अशक्य है उनका निवारण करना, फिर भी मुझे कोई खतरा नहीं है क्योंकि स्वाद भेद के कारण ज्ञान अलग है और राग अलग है, ये मेरे ज्ञान में आ जाता है। क्या कह रहे समझना, स्वाद भेद के कारण स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद भेद के कारण मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूँ, क्योंकि सदा अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय ज्यों का त्यों स्थित रहता है। इस प्रकार भावक भाव से भेद ज्ञान हुआ। क्यों, आप अपने मेहमान को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए, जमाई को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए, लेकिन जिस डब्बे में से जमाई उतरा उस डब्बे में से तो बहुत भीड़ उतरी। कहता मेरे पास तो घर में व्यवस्था की है, वो तो दो ही आदमी की है मेरे पास ले जाने की व्यवस्था, मेरी गाड़ी में तो दो ही आदमी बनेंगे और आदमी तो हजारों उतर रहे और मेरे ज्ञान के गए भी बन रहे। क्यों बन रहे के लिए बन रहे, अरे घबराया कि हाय राम हाय राम, इतनी क्या थे बस, पूरी बस लानी तो ये थी और एक बस से भी काम क्या चलेगा। इस पंजाब मेल में से तो ऐसा लगा दीना पे चार बसें उतर गई है, अब मैं क्या करूं। तेरे को क्या करना, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे को ज्ञान में के गए नहीं बनते, अगर जमाई साहब ही ज्ञान के गए बनते तो मेरा ठीक रहता, भगवान आत्मा में ऐसा स्वभाव होता कि अगले जमाई ज्ञान के गए बने पर बाकी लोग ज्ञान के गए नहीं बने तो बहुत अच्छा रहता, अब तो बहुत गड़बड़ हो गई। कहते ज्ञान क्यों घबराता है, जिस ज्ञान स्वभाव में ऐसा है कि वे सब ज्ञान के गए बने, उसी ज्ञान स्वभाव में एक ऐसी शक्ति भी है कि वो ये भेद विज्ञान कर लेता है कि ये जमाई मेरा है और बाकी मेरे नहीं है, इसलिए मेरे माथे पे कोई बोझा नहीं है। उतरे उतरे जाने भैया, बहुत रिक्शे वाले खड़े हैं देखे नहीं मैंने, क्यों, लेकिन आज तो ज्यादा ही भीड़ उतरी, रिक्शे तो कम ही है, होंगे तो खड़े रहेंगे क्या कहना है। क्या ख्याल है ना, स्वाद भेद उसी ज्ञान में ये भी ताकत तो है ना, फिर तेरे को ज्ञान में गे वो बनते हैं तो इसमें तेरे को क्या तकलीफ है। नहीं नहीं मैं तो आंखें चुराता हूँ, मैं तो किसी आंख ना मिल जाए, आंख क्यों नहीं मिल जाए, जिनकी तेरी जानी पहचान नहीं है तू खूब आंख मिला तो भी वे तेरे से ये अपेक्षा करते ही नहीं है कि तू उनको अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाए और माला में पहनाए। क्यों, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, प्रधानमंत्री भी उतरे लेकिन तुम उसे माला पहनाओगे, अभी तो जमाई को पहनाओ ना आराम से माला। क्या क्या कर ज्ञान में ये भी तो ज्ञान में ही है। नहीं आया समझ में, तो गुरु और चेला जा रहे थे, वैद्य थे दोनों, एक गांव के पास पहुंचे, वो पुराने जमाने में चार दिन इस गांव में वैद्य किया, आठ दिन उस गांव में की, जिन डॉक्टरों की चलती नहीं है, आजकल भी डॉक्टर ऐसा भी करते ना, तीन दिन ग्वालियर में, दो दिन भोपाल में, पांच दिन हमारी इसके स्पेशलिस्ट उसके स्पेशलिस्ट तक घूमते रहते क्या नहीं, ऐसे वो वैद्य भी घूमते थे। तो चेला बोला गुरु जी इस गाँव में जाने से कोई लाभ नहीं है, कि क्यों बेटा क्या बात है, यहाँ कोई बीमार होगा ही नहीं, तूने कैसे जाना? कि देख नहीं रहा गुरु जी एक गांव के किनारे कितने नींबू के पेड़ हैं, जहाँ इतने नींबू के पेड़ हैं और हर आदमी नींबू सुबह शाम सेवन करता होगा, वहाँ कौन बीमार पड़े क्या? वो आयुर्वेद में जो कहानी प्रचलित है वो तो इसके लिए कि नींबू में कितने गुण हैं, ये बताने के लिए वो कहानी सच्ची है कि झूठी है वो आयुर्वेद वाले जाने, लेकिन मतलब नींबू इतनी बढ़िया चीज है कि जो लोग उसका सेवन करेंगे वे बीमार पड़ेंगे ही नहीं, ये बताने के लिए किसने क्या कहा, शिष्य ने गुरु ने क्या कहा, शिष्य ने इतने नींबू के पेड़ हैं तो इस गांव में कोई बीमार होगा ही नहीं, इसलिए चलो दूसरे गांव, इस गांव में जाकर के भूखो मरने से क्या फायदा। तो गुरुजी बोले बेटा तुम अभी अनाड़ी है, समझता नहीं है कि क्यों, आप ही ने तो बताया क्या नींबू की महिमा, आपने ही मुझे शास्त्रों में पढ़ाई है, हैं? फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये जो नींबू है ये नींबू में अकेला रस ही है कि बीज भी है, कैसी बात करते हो, बिना बीज के कोई फल होता है क्या? फल में बीज तो होते ही हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो लोग नींबू का रस पीते होंगे भूल से थोड़े बहुत बीज भी उसके पेट में चले जाते होंगे, और इसलिए कुछ लोग बीमार जरूर होंगे। वो क्या बताना चाहते हैं कि नींबू का रस जितना लाभदायक है नींबू के बीज उतने ही नुकसानदायक है, क्यों? इसलिए तो कहते हैं ना ये संतरे के नींबू के मौसमी के ये सब बोतल में बंद किए हुए रस आते हैं ना, उनमें यही तो डिफेक्ट है, वहाँ कौन नींबू के बीज निकाल निकाल करके और फिर वहाँ रस निकालेगा नींबूओं के, और तो नींबू के नींबू सीधे मशीन में डाल दिए क्यों और सब निचुड़ निचुड़ करके आगे, तो नींबू का रस भी है उसमें बीजों का रस भी है, और अपने जो नींबू निकाला बीज निकाल के फेंक देंगे नींबू फर्क है कि नहीं। मुझे तो इतना बताना है नींबू किसे मेरा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं वैद्य नहीं हूँ, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस गांव में इतने नींबू हैं तो उस जितने नींबू हैं उससे चौगने बीज भी होंगे, एक एक नींबू में चार चार बीज तो होगा ना, क्यों चिंता करते हो? तो जिस जो ज्ञान पर को जानता है वो ज्ञान ये भी तो जानता है कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, तो फिर क्या खतरा है कि हम जिसको जानेंगे उसी को अपना मान लेंगे और उसे राग करेंगे और दुखी हो जाएंगे, क्यों पार्टनर जी तर्क ख्याल में आया कि नहीं है? लेकिन वो ज्ञान भेद ज्ञान की ताकत भी तो रखता है, प्रगट स्वाद भेद के कारण उस स्वपर का भेद विज्ञान भी तो कर लेता है, वो भेद विज्ञान करने की ताकत नहीं होती और अकेले जानने की ताकत होती तो खतरा हो सकता था कि हम जिसको जाने उसको ही अपना मान लें। अनादि काल से असैनी पंचेंद्री को यही तो होता है, असैनी पंचेंद्रीय तट निगोदिया से लेकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने नंबर क्या है 96 ये प्रकरण है ना, अनादि से इस जीव को इंद्री ज्ञान है, हैं? और इंद्रियों के माध्यम से रूपी पदार्थ ही दिखाई देते हैं, और जो आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है तो वो किसी को अपना माने ही माने तो सामने जो पदार्थ दिखाई दिया ज्ञान का गे बना उसमें ही अपनापन स्थापित कर लेता है, इसलिए इसे मिथ्या दर्शन है। आता कि नहीं आता? व्यासी पेज पर बताना चाहता, व्यासी पेज पर ये लिखा है, नीचे से 5-6 पंक्तियां ऊपर पढ़ना। क्या मतलब है? ऐसा प्रश्न किया कि आप कहते हो पर पदार्थ में अपनापन स्थापित करे एकत्व बुद्धि करे तो मिथ्या दर्शन होता है, तो उन्होंने कहा एक इंद्री दो इंद्री बेचारे क्या पर में अपनापन करते होंगे तो उनको कैसे मिथ्या दर्शन हो गया, तो उसका जवाब दिया कि उनको इंद्री ज्ञान है, और इंद्री ज्ञान से आत्मा तो दिखाई देता नहीं पर पदार्थ ही दिखाई देते हैं, मान लो स्पर्श इंद्री ज्ञान है, स्पर्श इंद्री संबंधी ज्ञान है तो उससे स्पर्श होता है, तो जो भी पुद्गल का ही स्पर्श होगा और जिसका ज्ञान हुआ उसमें श्रद्धा नाम का गुण अपनापन स्थापित कर लेता है, क्योंकि किसी को अपना माने ही माने और आत्मा तो दिखाई दिया नहीं तो किसी न किसी को तो अपना मानेगा ना, इसलिए कर लेता है, तो उसके लिए तो खतरा ही है। तो वो भी कहे कि हम जाने ही नहीं किसी को, तो फिर तो नहीं करेगा ना नरेंद्र अपना अपने स्थापित, फिर तो ठीक है ना, फिर मिथ्या दर्शन नहीं होगा, कि मिथ्या दर्शन भी नहीं होगा और फिर ज्ञान भी नहीं होगा तो अजीब जड़ हो जाएगा, क्योंकि छयोक्षम ज्ञान का अंतिम पॉइंट निरावरण होता है, पर्याय नाम का ज्ञान, इधर आप समझते हैं, तो ज्ञान खत्म हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा, पर जो जानेगा तो जिसको जानेगा उसको अपना मानेगा ही, श्रद्धा को अपना काम करेगा कि नहीं करेगा, तो असैनी पंचेंद्री तक तो इसीलिए मिथ्या दर्शन छूटता नहीं है, जो जो पदार्थ ज्ञान का गेय बनता है वो उसको अपना मान लेता है, सौर पर का भेद विज्ञान नहीं कर पाता है। अब तेरे को क्या खतरा है, तेरे ज्ञान में तो सुपर भेद विज्ञान करने की ताकत आ गई ना, थेरोसम ज्ञान में सैनी पंचेंद्री के, इसीलिए तो नियम है सैनी पंचेंद्री के बिना कोई सम्मा दृष्टि नहीं हो सकता, एक इंद्री जैसी दशा तेरी नहीं होगी, क्योंकि तेरे को अकेला ज्ञान ही नहीं है, अपना और पराये को पहचान करने की ताकत भी उस ज्ञान में है, इसलिए लिखा है देखो, यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का निवारण करना अशक्य होने से मेरा आत्मा और जड़ पदार्थ श्रीखंड की भांति एकमेक हो रहे हैं, तथापि श्रीखंड की ही भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद भेद के कारण मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूँ, क्योंकि सदा अपने एकत्व में प्राप्त होने से एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में समय ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है, इस प्रकार भावक भाव से भेद ज्ञान हुआ। तो यहाँ श्रीखंड का उदाहरण देकर समस्त द्रव्यों का परस्पर एक क्षेत्रावगाह भी समझाया और परस्पर भिन्नता भी स्पष्ट कर दी गई है, तो एक लाठी से दो काम किए हैं, एक उदाहरण से दो काम किए हैं, दोनों इकट्ठे हैं ये भी बताया और जुदे जुदे हैं ये भी बताया। कोई अजैन विद्वान यहाँ प्रश्न सुनने आवे, ख्याल में है ना, अब हमारे यहाँ के जो व्यवस्थापक है ना कमल चंद जी, इनको चिंता हुई कि पंडित जी कहीं ऐसी बात ना कह दें जो वो जैनोतरों के विरुद्ध पड़ती हो, क्योंकि बड़ा विद्वान आया है, अब क्या करें, और मैं पंडित जी से कुछ कह सकता नहीं हूँ, अकेले में पहले होता तो कान में मंत्र फूंक देता, अब भरी सभा में मैं क्या करूं, तो बहुत होशियार है कि पंडित जी साहब ये शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, गीता तो इन्हें कंठस्थ है और जैन धर्म का भी अध्ययन है, कभी कभी महावीर जयंती पे हम इनको बुला लेते हैं, आपका व्याख्यान सुनने के लिए मैं स्पेशल लाया हूं। शर्मा जी कह रहे समझ रहे कि मेरा परिचय दे रहे हैं इनको, मैं चौड़ा बाजार सकड़ा हो रहा है, लेकिन ये बता रहे हैं क्या समझ रहे हैं कि नहीं, इस माध्यम से इसी माध्यम से दूसरी बार बता दिया, भेद ज्ञान भी करा दिया कि नहीं, तो भेद ज्ञान करा दिया ना, सारे बहुत अच्छे विद्वान हैं, ये महासभा के अध्यक्ष हैं, क्या मतलब कोई भी तरीके से वो कैसी मान्यता वाला जीव है, वो उसका ज्ञान कहाँ सा पता आपने बहुत अच्छा किया आप लाए हैं, बहुत अच्छा किया बस समझ जाता है क्या है असली इसके पीछे क्या है, क्या खतरा है उसको बोलो, कैसा मैं क्या कहता, आप तो प्रचन में बैठ गए थे अभी बीच में आ गए, पर अब मैं आपसे क्या कहता तो जो कमल चंद जी बराबर भी अकल नहीं है कि कहता कह देता ना, कहने में क्या तकलीफ है, सबके सामने कह देता ना, उसमें क्या है। एक राजा था, टांग से लंगड़ा था और सब लोग महाराज 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 सब कवि आगे खूब प्रशंसा करें, देखो वो लंगड़ा है तो कोई लंगड़ा नहीं कह सकता, एक कवि बोला मैं कहूंगा, एक बार नहीं तीन बार कहूंगा, बोलो कि राज दरबार में रह नहीं पाओगे, इनाम मिलना तो बहुत दूर की बात है, इनाम भी लेके आऊंगा और लंगड़ा भी कहूंगा, कि सोच लो कि क्या सोचना है, तो गया राज दरबार में, उसने बढ़िया कविता बना के ले गया, एक ही टांग ऐसे जीत लियो से गिरो जग क्या यदि तेरी दो टांगे होती तो क्या करता, एक ही टांग ऐसो जीत लियो से गिरो जग, ऐसो नाथ तू ही लंगड़ा है, तू ही लंगड़ा है, तू ही वाह तू ही लंगड़ा है, तू ही लंगड़ा है, तालियां पिट गई और 1,00,000 रुपए का इनाम मेरी तरह से निकला। अरे अरे कहने की बात चाहिए, आचार्य ने कितनी तरकीब से ये बात कह दी कि श्रीखंड की भांति एक में एक हो रहे हैं तो भी श्रीखंड की भांति ही स्वाद भेद के कारण एक नहीं हुए ये पता चले बिना रहता नहीं है और भावक भाव से भेद विज्ञान हो जाता है। जब भगवान आत्मा अंदर जानने में आया तो वहाँ राग भी था, तो राग भी जानने में आया, कोई दिक्कत बात नहीं, महावीर साहब आनंद राग को जानने में कैसे आया, राग जानने में आएगा तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा, हो जाएगा क्योंकि नींबू में बीज भी है ना, तुम्हारा पेट भी पलेगा बेटा, चलो इस गांव में कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान में जब राग आएगा तो राग का स्वाद जुदा होगा और ज्ञान का स्वाद जुदा होगा, तो वो ज्ञान ज्ञान का स्वाद में अपनापन कर लेगा और राग के स्वाद में अपनापन नहीं करेगा, तो तेरा बंध नहीं होगा, सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए पर तेरे ज्ञान का गेय बनता है तो घबरा मत, छपक श्रेणी में भी बनता है, पूछ लो यशपाल जी साहब से, पर पदार्थ ज्ञान के गेय छपक श्रेणी में भी बनते हैं और आत्मा जाके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कहाँ लिखा, गोमर सार में लिखा, तत्वा सूत्र में लिखा आता ना, विचारोस व्यंजन योग संक्रांति, क्या अर्थ है इसका, के अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और एक और है ना क्या, योग संक्रांति, ये तीन संक्रांतियां दूसरे शुक्ल ध्यान में भी होती है, शुक्ल ध्यान तो पक्का हो गया, वो श्रेणी में होता है और उसमें अर्थ बदलता है ज्ञान का गे, और व्यंजन माने पर्याय बदलती है, पर्याय से दूसरी पर्याय का ज्ञान होता है, अर्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है, तो अपने आत्मा को छोड़ के दूसरे पदार्थ का ज्ञान, पर का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ बोलो, पर का ज्ञान होता है लेकिन पर ये मैं हूँ ऐसा ज्ञान हो उसका नाम अज्ञान है, पर जो ये पर है ऐसा ज्ञान हुआ तो उसका नाम अज्ञान थोड़ी है, वो थोड़ी खतरनाक है, जो जैसा खतरनाक है उसका नाम मिथ्यात्व है। देखो ये वहां लिखा है, ये बात जो यहाँ दी है इसी बात को पहले इसे पढ़ता हूँ फिर आगे बताऊंगा। यहाँ श्रीखंड का उदाहरण देकर समस्त द्रव्यों का परस्पर एक क्षेत्रावगाह भी समझाया और परस्पर भिन्नता भी स्पष्ट कर दी गई है। श्रीखंड दही और चीनी मिलाकर बनाया जाता है, श्रीखंड में दही और चीनी एक जैसे ही दिखाई देते हैं, पर चखने पर दही की खटास और चीनी की मिठास अलग अलग जानने में आती है, इससे पता चलता है कि मिले हुए दिखाई देने पर भी वस्तुतः वे मिले हुए नहीं है, क्योंकि यदि पूर्णता मिल जाते मिलकर एक हो जाते तो उनका भिन्न भिन्न स्वाद आना संभव नहीं था। इसी प्रकार जानने वाली ज्ञात्रिता और जानने में आने वाला मोह है, यद्यपि अज्ञानी को अभेद ही अनुभव में आते हैं तथापि स्वाद भेद के कारण उनकी भिन्नता जानी जा सकती है। निराकुल स्वाद वाला ज्ञान और आकुलता स्वाद वाला मोह ज्ञान में पृथक पृथक ही भाषित होते हैं, इससे ज्ञानी आत्मा निर्णय कर लेते हैं कि आकुलता स्वाद वाला मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो निराकुलता स्वाद वाला ज्ञान ही हूँ, इसी को ज्ञानी जन मोह से निर्ममता कहते हैं। आया ना ख्याल, देखो इस गाथा का स्पष्टीकरण करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, बात तो खत्म हो गई है, अब स्वामी जी का कोटेशन देता हूँ इसी बात को सिद्ध करने के लिए, ये कोई अपने सौभाग्य की बात नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है, स्वामी जी का कोटेशन देना दुर्भाग्य की बात है। देखो आगम की बात पूरी आ गई तो जो स्वामी जी के भगत नहीं है वे तो इतने से ही मान लेंगे, लेकिन जो स्वामी जी के भगत जरा एक्स्ट्रा बुद्धिमान हो गए ओवर वाइज तो मैं कह नहीं सकता, उनको जब तक स्वामी जी का कोटेशन उसी तायत का निकाल के नहीं बताओ तब तक संतोष नहीं होता है, नहीं कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, और होगा बात, देखो तो स्वामी जी क्या निकालते हैं यार, इसलिए मैंने इसमें स्वामी जी के जितने कोटेशन दिए हैं वो सब मुमुक्षुओं के लिए दिए हैं, क्योंकि विरोधी तो स्वामी जी का कोटेशन काय को मानेंगे, वे तो उन्हें प्रमाण ही नहीं मानते हैं, विरोधियों को स्वामी जी का कोटेशन देने की क्या जरूरत है, क्यों मोती चंदी है ना, लेकिन ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पर पदार्थ ज्ञान का गे बनते हैं तो उससे कोई हानि नहीं है, ये बात गुरुदेव कहते हैं तो गुरुदेव कहते तो चलेगा, नहीं तो गुरुदेव कहते नहीं तो नहीं चलेगा। क्या गजब हो गया है, हम इतने अंधे हो गए हैं। कुंद कहते हैं, अमृतचंद कहते हैं, जयसेन कहते हैं, नैमिषारण सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, धवलाकार कहते हैं, तो नहीं चलता है ये, ये हमारा अति अधिक व्यामोह नहीं है क्या? फिर भी हमको ये विकल्प आता है कि नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव ने भी क्या कहा वो भी दे दो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। इतना पर्याप्त नहीं है क्या? देखो अभी गुरुदेव क्या कहते हैं, सुनो। यहाँ कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य भावक रूप होकर मोह की रचना करता है। यहाँ जो मोह की बात है वह चारित्र मोह की अपेक्षा से है, सम्मत दर्शन के बाद की बात है, मिथ्यात्व की बात नहीं है। पर की ओर झुकने वाला भाव ही मोह है, यह मोह मेरा कोई भी संबंधी नहीं है। पर की ओर सजग रहने का जो भाव है वह मेरा नहीं है, परंतु अपने स्वभाव की ओर सजग रहने का भाव है वो मेरा है। वो पर की ओर झुकने का भाव ज्ञानी के है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, है लेकिन ज्ञानी साथ में ये जान रहा है कि ये भाव मेरा नहीं है, और जो आत्मा की ओर सजग हुआ वो भाव मेरा है। ए, ए, तो उसके निषेध की क्या जरूरत रही? तो अपनेपन का निषेध कर दो, काम हो जाएगा। बस रेल किसे कितने लोग उतरे तेरे को क्या तकलीफ है, ये अपने नहीं है, बस काम तेरा खत्म। इतने में झगड़ा खत्म होता क्या नहीं होता है? भावक रूप मोह कर्म और उसकी ओर झुकने वाले भावों के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि एक चैतन्य धातु ज्ञायक भाव का परमार्थ से परभाव रूप होना या भाव रूप होना अशक्य है। जिस प्रकार कर्म भावक रूप होता है तब मोह होता है, उसी प्रकार मैं ज्ञान दर्शन उपयोग स्वाभाविक तत्व हूँ, जिससे मेरी पर्याय में ज्ञान दर्शन शक्ति की व्यक्तता होती है। यह व्यक्तता रूप उपयोग मेरी चीज है, ऐसा उसके ज्ञान में आ रहा है, किंतु मोह मेरी चीज नहीं है। कर्म के निमित्त से हुआ राग द्वेष का परिणाम जो उपयोग में झलकता है, देखो क्या लिखा, क्या नाम, क्या झलकता है? राग द्वेष रूप परिणाम ज्ञान में झलकता है कि नहीं? वो पर है कि नहीं? वो यहाँ तो पुद्गल कह रहे ना उसको, तो वो पर को जानता कि नहीं जानता? तो ज्ञानी को उससे खतरा है, ज्ञानी कहते मुझे नहीं जानना उस राग को। आजकल ऐसे चल रहा है, मूंग छुओ मैं इसलिए बोलता हूँ, हो सकता है ये बीमारी बिना तक नहीं आई हो, आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बता अच्छा है। माने यहाँ भी बेड की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी नींबू बीज वाले नींबू है, बिना बीज वाले नींबू नहीं है। ने? कर्म के निमित्त से हुआ राग द्वेष का परिणाम जो उपयोग में झलकता है, ये सब गुरुदेव का है, वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह संकोच कीर्ण ज्ञायक स्वभाव भाव रूप शुद्ध चैतन्य उपयोग स्वभावी वस्तु का विकार रूप होना अशक्य है। छठवीं गाथा में लिखा ना, भगवान आत्मा ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, इसका क्या मतलब? आत्मा में तो और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरे को अनुभव में जो वो ज्ञात हुआ, यानी ये मैं हूँ, वो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ये ज्ञायक भाव है, वो मैं हूँ, अपनेपन में ज्ञायक भाव में अपनापन आया, उसका नाम है ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। और बाकी का राग देश क्या, वो भी ज्ञात हुआ, लेकिन वो पर रूप से ज्ञात हुआ, वो निज रूप से ज्ञात नहीं हुआ, बस खत्म, कुछ दिक्कत नहीं है। ज्ञात नहीं हुआ ये क्यों कहते हो? हमको तो क्या लगता है, उपल खाद खुदावते, वो मुनिराज ध्यान में बैठे थे तो हिरण ने आकर के खाद खुदाई, तो महाराज को पता ही नहीं चला, तो ध्यान पक्का क्यों? और महाराज को पता चल जाए तो ध्यान कच्चा? यदि कदाचित वो ज्ञान का गे भी बन जाए तो भी उसके विकल्प नहीं लंबा है, और बीतरागता वैसी की वैसी बनी रहे तो उसमें कोई हानि नहीं है, कि ज्ञान का गेय तो बन ही सकता है ना, तो इसलिए वो छोटे मुनि हो गए, और जिनके ज्ञान का गेय नहीं बना वे बड़े मुनि हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आगे क्या रहे हैं? देखो आगे क्या लिखते हैं, कहाँ गया, कहाँ देख? जिस प्रकार कर्म भावक रूप होता है तब मोह होता है, उसी प्रकार में ज्ञान दर्शन उपयोग स्वाभाविक तत्व हो गया ना, आगे मैं ये तो हो गया ना कि नहीं होगा, हो गया ना, मैं तो चैतन्य शक्ति स्वभाव वाला तत्व हूँ, इसलिए मेरा जो विकास होता है वह भी जानने देखने परिणाम रूप से ही होता है। जानने देख रूप न रूप परिणाम रूप मेरा विकास, उसको तो मैं अपनी तरक्की मानता हूँ। जो राग रूप हुआ उसको मैं अपनी तरक्की में गिनता ही नहीं हूँ। ख्याल में है ना क्या? मेरे खेत में जो गेहूं पैदा हुए वो दानों को मैं अपना संपत्ति मानता हूँ और घास फूस को संपत्ति मानता ही नहीं हूँ। पैदा तो वो भी होता है लेकिन वो मुझे संपत्ति के रूप में भाषित नहीं होता है। और मेरे को ये बस मुझ रूप भाषित नहीं हो तो हमारा काम हो जाएगा। देखो भाव कर्म के निमित्त से जो विकार होता हुआ मेरा विकास नहीं है। पर्याय में भी विकार ना हो ऐसा मेरा स्वरूप है। शक्ति रूप से तो आत्मा ज्ञायक है ही किंतु उसकी जो व्यक्तता प्रकट होती है वह भी ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप ही होती है। आचार्य जयसेन कहते हैं कि एक विशेष बात यह है कि पूर्व गाथा में जिस स्वसंवेदन ज्ञान को प्रत्याख्यान कहा था उसे ही यहाँ निर्मत्व निर्मोहत्व कहते हैं। गजब हो गया। प्रत्याख्यान और निर्मोहत्व ये दोनों का एक ही अर्थ है। वो कहते हैं दो चीजें ही नहीं है। देखो आगे देखो मैं आपको जो बताने वाला था अब निकालो पेज नंबर 205 मिल गया। 205 है 305 हाँ 305 304 के नीचे की तीन पंक्तियां पढ़ो। इस प्रकार प्रताप बंत बरतते हुए मुझ में मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त परिद्रव्य स्फुरायमान हैं। ये क्या है मालूम आपको? ये हम आत्मख्याति का अर्थ है। सबसे ऊपर देखो 304 के ऊपर इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में आता रमेशचंद इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये सब वही चल रहा है नीचे तक और कहाँ 305 पेज पर तीन पंक्तियों के बाद जो इन्वर्टेड के वहाँ क्लोज हुआ ना वहाँ तक बाबूलाल जी मधुर ख्याल में आ गया ना। तो ये आत्मख्याति का अर्थ है। इस प्रकार प्रताप बंत बरतते हुए मुझ में ऊपर लिखा कि मैं प्रताप बंत हूँ तो प्रताप बंत बरतता हुआ मुझ मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त परिद्रव्य स्फुरायमान हैं। क्या कह रहे? मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा समस्त बाह्य पदार्थ मेरे में स्फुरायमान है माने मेरे ज्ञान के गेय बन रहे हैं। तथापि मुझे कोई भी परिद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप नहीं भासते जो कि भावक रूप और गेय रूप होकर मेरे साथ होकर मुझे पुनः मोह उत्पन्न करे। वे कहते देखो मेरे ज्ञान में सारी दुनिया झलके कोई खतरा नहीं है। खतरा कब है कि जब वे मुझे मुझ रूप भाषित हो तो मोह का अंकुर खड़ा हो जाएगा। देखा क्या क्या मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा क्या कह रहे क्या कहना चाहते हैं? मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है। क्या है तेरी स्वरूप संपदा? विचित्र। विचित्र जानते किसे बोलते हो? इसमें जो जयचंद जी छाबड़ा ने अर्थ किया है वो लिखा है अनेकाकार। विचित्र माने अनेकाकार और वो होता भी है लेकिन विचित्र का अनेकाकार अर्थ क्यों होता है उसकी गहराई में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। इसमें तो मैंने सब लिखा है। यदि आप गहराई से स्वाध्याय करेंगे तो सब बात इसमें लिखी है कोई छोड़ी नहीं है बहुत सरल भाषा में बिना किसी दूसरे से पूछे आपकी समझ में आ जाए। फिर भी मैं अभी यहाँ आपको समझाता हूँ। तो विचित्र माने क्या? तो जानते हो चित्र? चित्र किसे बोलते हैं? फोटू को। फोटू को चित्र क्यों बोलते हैं? अभी समस्या है। तो देखो कोई चीज एक रंग की होती है तो उसे चित्र नहीं बोलते हैं। चित्र में कम से कम दो रंग चाहिए क्योंकि चित्र माने होता है अनेक। तो अनेक रंगों से बना है इसलिए उसे बोलते हैं चित्र। तो चित्र विचित्रकार तो अनेकाकार इसलिए किया है। तो के साथ कैसी बात नहीं एक रंग से भी तो चित्र बन जाता है कि नहीं बन जाता है? नहीं बनता। अभी लाओ आप मैं एक रंग लाओ मैं बना दूंगा। अभी पेन लाओ अभी हर चित्र बना देता हूँ। तो भैया दो रंग तो कम से कम होंगे। एक रंग तो कागज का और एक रंग मेरी उस स्याही का तो अनेक हो गए ना। और मैंने कल बताया था अनेकांत के विशेषण में कि अनेक के दो भी अर्थ होते और अनंत भी होते हैं। ये अपन बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। चित्र आता है तो ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन टीवी पे आते हैं नहीं? तो दो रंग तो चाहिए। तो चित्र माने अनेक हो गया ये तो आपकी समझ में आ गया ना। और विचित्र माने विशेष प्रकार के अनेकता जिसमें भाषित हो उसका नाम है विचित्र। तो भगवान आत्मा का ऐसा विचित्र ज्ञान स्वभाव है कि उसमें स्वद्रव्य भी भाषित होते हैं और परद्रव्य भी भाषित होते हैं और स्वद्रव्य भी अपनी स्वरूप संपदा के साथ भाषित होते हैं और परद्रव्य भी अपनी स्वरूप संपदा के साथ भाषित होते हैं। और ये ऐसा भाषित होना ये मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है, ये मेरी कोई खराबी नहीं है कि मुझे पर पदार्थ दिखते हैं। नहीं आया समझ में क्या कहना चाहता हूँ, बहुत मार्मिक बात है। फिर कहता हूँ क्या नरेंद्र, ख्याल तो आता ना जो मैं कहता हूँ, फिर तुम लोगों को नहीं हाँ मिलेगी तो बाकी जनता के आएगी कि नहीं आएगी, शाम का व्याख्यान होता है बाकी के लोगों के लिए। फिर कहता हूँ सुनो, विचित्र स्वरूप संपदा माने क्या, कि मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा भाषित हो अनंत गुण पर्याय सहित, और परद्रव्य अपने अनंत गुण पर्याय सहित भाषित हो, सर्वद्रव्य पर्याय उसी केवल से सब द्रव्य हो जाते छड़ाला में है ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, और भाषे एक काल प्रगत केवली भगवंता, किनके सकल द्रव्य के ना, संपूर्ण द्रव्यों के अनंत अनंत गुण और उनकी पर्याय ये मेरे ज्ञान में भाषित है, अनेक पदार्थ ये विचित्र हो गए, अनेक गुण और अनेक पर्यायों सहित ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव है, इसलिए उसे कहा मेरी ये विचित्र स्वरूप संपदा है, एक ही समय में सब दिखाई देता है, आगे का पीछे का क्यों लाल पीला नीला किलहर हरा सब दिखाई देता है। भगवान आत्मा की कैसी विचित्र स्वरूप संपदा है, प्रवचन सार के 200 में नहीं 192 में टीका में ये लगा, खचित हो गए हैं, कीलित हो गए हैं समस्त संपदा, डूब गए हो समा गए हो कौन सब पर पदार्थ लिखा कर नहीं लिखा, एकाकार हो गए हो खचित हो गए हो। मैंने छिंदवाड़ा में एक बात बोली थी तो लोग उस समय बहुत हल्ला हुआ कि मैंने कहा भैया केवल ज्ञान कल्याणक था, मैंने कहा आज भगवान को क्या हुआ था भैया, क्या हुआ था केवल ज्ञान, नहीं केवल ज्ञान तो हुआ था ये तो मैं भी जानता हूँ केवल ज्ञान कल्याणक, लेकिन हुआ क्या था, आज कोई नई चीज हुई थी ना जो कल तक उनके पास नहीं थी, वो कुछ हुआ था कि नहीं, हाँ हाँ हुआ था, वो हुआ था तो क्या हुआ था, आज उनने आत्मा को जाना था, कल तक वे आत्मा को नहीं जानते थे, क्या सती समझ में आया, आज वे आत्मज्ञ हुए थे कि सर्वज्ञ हुए थे, तो निश्चय से हुए थे या व्यवहार से हुए थे, सचमुच उन्हें सर्वज्ञ हुए थे कि नहीं, सर्वज्ञत्व शक्ति भगवान आत्मा में निश्चय से है कि व्यवहार से, सुपर प्रकाशक शक्ति भगवान आत्मा में निश्चय से है कि व्यवहार से, क्यों तो आज वे सर्वज्ञ हुए, आज उनके ज्ञान में लोकालोक झलका था, क्यों एक एक गुण की एक एक पर्याय उनके ज्ञान में झलकी थी, पुद्गल में भी अनंत गुण है, किसने देखे पुद्गल ने कि केवली ने, तो केवली के लिए पुद्गल स्वा है कि पर, और वो देखा तो सच्चा देखा कि झूठा देखा है? क्यों अरे ये तो भगवान आत्मा की विचित्र स्वरूप संपदा है, इसको वे कह रहे कि स्वरूप है ये पर को जानना, ये भगवान आत्मा का पर रूप नहीं है, क्या है स्वरूप है और वो उसकी संपदा है, वो विपत्ति नहीं है, समझ गए ना, वो उसके अपना है ना, अपना लड़का है बहुत अच्छा अभिनय करे, लड़की बहुत अच्छा भरतनाट्यम करे, तो जो ऐसा घर हो ना कि मेरी लड़की को मैं स्टेज पर नचा हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए तो वो विपत्ति दिखती है, क्यों और जिनको लगता है कि नहीं नहीं सारी दुनिया में मेरी बेटी का नाम हो गया है, लाखों लोग उसके नृत्य देखने आते हैं, तो उसको वो संपत्ति लगती है कि नहीं लगती है, बोलो तेरे को अपना ज्ञान स्वभाव सुपर प्रकाश ज्ञान स्वभाव विपत्ति लगती है, भगवान जाने तेरे को क्या होने वाला है, नाराज मत होना, जब बात कहता हूँ छाती पे हाथ रखकर कड़काई से सुन लेना, कहीं वो नहीं तो एक हार्ट के डॉक्टर को बुला के रखो, ज्यादा तकलीफ हो तो ऐसी बात कहने वाला, तेरे को पर को नहीं जानना है ना, तो केवल ज्ञान हो जाएगा मोक्ष में जाएगा तो पर को नहीं जानने की सुविधा नहीं है वहाँ, अभी तो तेरे को है, तू जाने तो मुंह फेर सकता है, कोई चीज अच्छी नहीं लगे ना तो मुंह फेर सकता है, यहाँ गंदगी दिख पड़ी दिखे ना ऐसा मुंह कर सकता है नहीं, लेकिन मोक्ष में चला जाएगा तो तेरे को फिर नहीं जानने की सुविधा नहीं मिलेगी, और तेरे को पर के जानना इतना खतरनाक लगता है तो 24 घंटा पर को जानना पड़ेगा, मुझे आपकी शकल देखे गुस्सा आता है जुकाम हो जाता है, और फिर कहा आपको मेरे सामने 24 घंटा खड़ा कर दो मेरी आंखों खोल के रखना कर दो, तो दंड है कि गुण मेरे लिए दंड है कि नहीं, बोलिए आप, आपको देखने के लिए मेरे को गुस्सा आता है और 24 घंटा आप मेरे सामने खड़े रहो और मुझे देखने को बाध्य कर दो, तो वो यदि ये धर्म है कि पर को नहीं जानना, यदि धर्म है तो सर्वज्ञ भगवान को पर जानने के लिए बात दें, उन्हें जो सजा क्यों दी गई? बोलो महावीर प्रसाद जी, महावीर को दी है सजा? भगवान महावीर की बात करता हूँ भैया, दिए कि नहीं दिए? कहें साहब आप कुछ भी कहो, हमको तो पर को जानना पसंद नहीं है। जानना पसंद नहीं है? नहीं है ना, तो है ये कैसी जगह कि आपको कम से कम पर का जानना होगा, क्यों स्वभाव का नाश तो होता नहीं, तो पूरा बिल्कुल जानना नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी दे नहीं सकता हूँ, लेकिन कम से कम जानना होगा पर का। ऐसी एक जगह है जहाँ पर पर्याय नाम का थ्योसम ज्ञान रहता है, और उसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आचार्य तो ये कहते हैं कि वो भी जानना, वहाँ निगोजिया को पर तो स्वतः जानने में आता नहीं है, और पर जानने में आए नहीं तो फिर वो जड़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस ज्ञान को निरावरण रखा, नित्योद्घाटित निरावरण है वो किसको जानता होगा वहाँ? अब तू वो भी नहीं जाने तो इसका मतलब ये है कि यदि उतने जानने से तेरा कोई नहीं एलर्जी नहीं हो तो तू वहाँ जा सकता है, और उससे भी एलर्जी हो तो फिर तेरे को जड़ होना होगा। क्यों? ये बात मैंने वहाँ कही थी, क्योंकि आज बताओ हुआ क्या था भगवान महावीर को, आज आदिनाथ को हुआ क्या था? हैं? क्या हुआ था आज उनके बाल बच्चा हुआ था कि शादी हुई थी कि वो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तो था लेकिन क्या हुई थी? सर्वज्ञता हुई थी कि आत्मज्ञता हुई थी? सर्वज्ञता हुई, सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलका था ना, और अनंत काल तक रही है, अनंता अनंत काल यथा तथा फिर परिणय। नहीं, वो तो व्यवहार से झलका होगा, निश्चय से नहीं। केवल ज्ञान में भी निश्चय व्यवहार लगते होंगे, तुझे पता है ये निश्चय व्यवहार तो श्रुत ज्ञान के भेद है। ये निश्चय व्यवहार काय के भेद है? श्रुत ज्ञान के भेद है। केवल ज्ञान में तो नय होते ही नहीं है, पांच ज्ञान होते हैं ना, मति श्रुत अवधि मन पर और केवल ज्ञान, इसमें नए सिर्फ श्रुत ज्ञान में होते हैं, न मति ज्ञान में होते हैं, न अवधि ज्ञान में होते हैं, न मन पर ज्ञान में होते हैं, न केवल ज्ञान में होते हैं। तो केवल ज्ञान निश्चय से जाना था कि केवल ज्ञान से जाना था, क्या प्रमाण से जाना था? क्यों? अब प्रमाण में भी कोई असत्यार्थ होता होगा, क्यों? उनका जो अक्षर अक्षर ज्ञान है वो सत्य था कि असत्य था? अभी आने वाला है, देखो अभी गुरुदेव के में आए। देखो इस प्रकार प्रताप बंत बरतते हुए मुझ में मेरी विरचित स्वरूप संपदा के द्वारा, मान ज्ञान में जो ऐसी ताकत है ना स्वरूप प्रकाशक, ये उसकी विचित्र है, क्योंकि अनेक आकार झलकते हैं ना, इसलिए विचित्र है, अद्भुत है, और ये स्वरूप है और संपत्ति है। ये भगवान आत्मा की स्वरूप संपदा है, बाकी अनंत गुण में जो है वे तो स्वरूप संपदा है, और ज्ञान विचित्र स्वरूप संपदा है, क्योंकि अनंत गुण तो स्वग्राही है, परग्राही नहीं है, और ज्ञान गुण स्वपरग्राही है, इसलिए ये विचित्र है, ये अनेकाकार है, और बाकी तो सब एक ही कार है। ख्याल में आया? पढ़ना घर पर ले जाकर किताब को, और सौ सौ दफे पढ़ना तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं आया मैंने भी सौ सौ दफे पढ़ा है तब लिखा है। आप क्या समझते हैं चार पेज लिखने के लिए, इस झगड़े के जमाने में जहाँ अंदर और बाहर के दोनों जने टांग खींचने के लिए तैयारी में बैठे हुए 24 घंटा, वहाँ कोई एक लेन लिखना कोई इतना आसान काम है? क्यों? एक शब्द बोलना आसान काम है? चैलेंज 24 घंटा चारों तरफ से फेंके जा रहे हो अंदर बाहर से सबसे। गुरुदेव के प्रवचनों को भी सौ सौ दफे पढ़ा, और प्रवचन रत्नाकर में से पुराने जो सफे थे, आत्म धर्म में से पुराना कौन से थे वे? क्या था समय सात प्रवचन के नाम से वो, और फिर सब आचार्यों के और ज्ञानवती माता का और बीस आचार्य का और फलाने सब विरोधियों के अवरोधियों के सबके ऐसी लड़ाई लगा के रखी है, और रात को 2-2 बजे तक बैठकर ऑफिस में लिखता हूँ, क्योंकि सब लाइब्रेरी कहाँ कहाँ ढोडो के ले जाऊँ हर जगह। लोग कहते हैं हमारे यहाँ आ जाओ वहीं लिख लेना, तो सारी लाइब्रेरी लेके आऊँ तुम्हारे यहाँ, यहाँ तो नहीं लिख सकता हूँ। तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आई, पढ़ना उसको कई दफे तो ख्याल में आएगा एक एक शब्द के लिए। देखो क्या चलता है, तथापि मुझे कोई भी परद्रव्य, तो क्या लिखा स्वरूप संपदा के द्वारा, यद्यपि बाई समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है। ये क्या स्फुरायमान है? ज्ञान के गे बल और कुछ है स्फुरायमान का अर्थ? समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है, और ये चौथे गुणस्थान की बात है, ये सर्वज्ञ की भी बात नहीं है, क्योंकि 38 निकाह था किसकी है, उसमें लिखा है ना ज्ञानी हो गया है, और अब ज्ञानी क्या विचारता है वही है ना, समझ गया ना 38 निकाह था, खोल के बताऊं क्या? देखो समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है, इसका मतलब सारे द्रव्य परद्रव्य मेरे ज्ञान में गए बन रहे हैं, और वो मेरी स्वरूप संपदा है, ये कोई मेरा डिफेक्ट नहीं है। कहा पंडित जी आपने आंख उठा के चारों तरफ क्यों देखा? क्यों आंखें देखें? देखा और गड़बड़ी की हो तो बोलो,
मेरी स्वरूप संपदा है, तथापि मुझे कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप नहीं भासता। माने दिखाई देते हैं और मुझ रूप नहीं भासते, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं। वो दिखाई देंगे तो मुझ रूप भाषित हो जाएंगे, इसलिए मैं तो देखूंगा ही नहीं, ये कोई उपाय है? वैसे तो मेरा मन बहुत साफ है भाई साहब, लेकिन कोई माँ बहन दिखाई दे जाए तो बिगड़ जाता है। अरे नालायक, इसका नाम साफ कहते हैं। क्या करें कि लोक में ऐसा हो सकता है क्या कि तेरे को सारी जिंदगी कोई माँ बहन दिखाई ही नहीं दे? फिर तो पुरुषों का लोक अलग और महिलाओं का लोक अलग बनाना पड़ेगा ना। ऐसा संभव है लोक में? इसको साफ नहीं कहते हैं, इसको गंदा कहते हैं। कि दिखाई दे जाए तो गंदा हो जाता, दिखाई नहीं दे तो साफ रहता है। तो परद्रव्य दिखाई दे जाएंगे तो गंदा हो जाएगा और नहीं दिखाई देंगे तो साफ रहेगा। इसका नाम सफाई नहीं है। सफाई काय का नाम है? कि परद्रव्य दिखाई दे और गंदगी नहीं आए। बोलो क्यों? भगवान महावीर ब्रह्मचारी थे, देवांगनाओं ने आकर के भी दिगाया तो नहीं दिगे तो ब्रह्मचारी थे। क्यों? देखो तो मैं ब्रह्मचारी हूँ लेकिन दिगा है तो दिग जाऊंगा। इसका नाम ब्रह्मचारी है। अरे ना नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम, क्या कहे ना? क्या है? नहीं ऊपर से, ऊपर से इसके बाद की बोल रहे हो आप। शुरू भक्ति बोलो। चित्रम के मत्र यदि ते त्रिदोषांगना भी नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम। हे भगवान, चित्रम के मत्र, इसमें कौन सा आश्चर्य है? कौन सा? कि त्रिदोषांगना भी, कि देवांगनाओं के द्वारा आपका मन रंत मात्र भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ। कोई कहे कि वे तो महाराज ने देखे नहीं, वे देवांगना कहें एक दफे भी हमें देख लेते, हमारे हम उनके ज्ञान का गेय बन जाती और फिर उनका मन काबू में रहता, तब हम जानते। आगे बंद करके बैठे और तुम बहुत मन की प्रशंसा कर रहे हो, उसमें क्या है? बोलो, ऐसा हुआ? उनके ज्ञान का गेय नहीं बनी तो उसमें काय की महिमा है? बोलो आप। तो उनका मन नहीं चिगा, उनके ज्ञान का गेय नहीं बनी, उनने देवांगनाओं को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं और मन नहीं चिगा, इसमें क्या दम है? फिर कौन सी महिमा है? ऐसा तो मन हमारा भी है कि कोई नहीं देखे तो हमारा भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं होता है। फिर भगवान की महिमा क्या कि उनके ज्ञान का गेय बनी और फिर भी मन नहीं चिगा, महिमा इसमें है ना? बोलो काय में महिमा है? साहब मेरा पेट चीर दिया, फाड़ दिया, मेरी आंख में आंसू नहीं आया, क्योंकि मुझे बेहोश कर दिया। अरे बुरा, इसमें क्या बात है? तू होश में रहे और तेरा पेट चीर दे और फिर नहीं आया तब बोलना। तो हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, सारा लोकालोक उनके ज्ञान में है, सारे सुंदर से सुंदर देवांगनाएं उन्हें नग्न दिगंबराओं जैसी दिखती हैं और फिर भी उनका मन विकार को प्राप्त नहीं होता है, इसमें उनकी महानता है। ये 18,000 प्रकार का शील इसका नाम है। किसके होता है 18,000 प्रकार का शील? केवल भगवान के होता है। क्यों? जिनको कुछ नहीं दिखता है उनको नहीं होता है जिनको सब कुछ दिखता है उनको 18,000 प्रकार का शील होता है। बोले देखो पड़ोस में क्या लिखा है। इस प्रकार प्रताप बंध बरतते हुए मुझ में मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि 22 समस्त पदार्थ परद्रव्य स्वरायमान हैं, तो भी मुझ में कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप नहीं भासते। खतरा तो ये है मुझ रूप भासना नहीं कि जो भावक रूप, यदि मुझ रूप भासेंगे तो भावक रूप हो जाएंगे या गेय रूप हो जाएंगे, गेय रूप से मेरे साथ होकर पुनः मोह उत्पन्न करें। अब मुझ में द्वारा मोह पैदा नहीं कर सकते वो। क्यों? देखो गलत बात लिखी, क्योंकि निज रस से ही मोह को पुनः अंकुरित ना हो, इस प्रकार मूल से ही उखाड़ करके नाश करके महान ज्ञान